वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अथ भगवान वयम् अधुना त्वद् अवलोक परिमृष्ट असमलाह पढ़िए अपना भगवान है भगवान नहीं है भगवान नहीं भगवान अथ भगवान वयमधुना त्वदवलोक परिमिष्टाशयमला सुनिषिणा यत् कथितम् तावकेन कथमन्यथा भवति सूर्य ऋषि ने
शब्दार्थ अथ अतः भगवान हे श्री भगवान वयम् हम अधुना इस समय त्वत् अवलोक आपके दर्शन से परिमृष्ट धूल जाती है आशय मला हृदय की दूषित कामनाएं सुर ऋषिणा देवताओं के ऋषि नारद द्वारा यह जो कथितम कहा गया तावकेन जो आपका भक्त है। कथम किस प्रकार, अन्यथा और कुछ, मिथ्या भवती हो सकता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अतः हे भगवान, मेरे समस्त पाप कर्मों के कलमश भौतिक आसक्ति तथा विषयों के फल जिनसे मेरा मन तथा अंतःस्थल पूरित था सदा सर्वदा के लिए धुल गए हैं। जो कुछ नारद मुनि ने कहा वह अन्यथा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में नारद मुनि के द्वारा शिक्षित किए जाने के कारण ही मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो सका है। दोहराएंगे, अतः हे भगवान, मेरे समस्त पाप कर्मों के कलमश एवं भौतिक आसक्ति तथा विषयों के फल जिनसे मेरा मन तथा अंतःस्थल पूरित था सदा सर्वदा के लिए धुल गए हैं। जो कुछ नारद मुनि ने कहा है वो अन्यथा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में नारद मुनि के द्वारा शिक्षित किए जाने के कारण मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो सका है। तात्पर्य, यहाँ सही विधि है। मनुष्य को चाहिए कि वह नारद, व्यास तथा असित जैसे विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करे और उनके सिद्धांतों का पालन करे, तभी उसे अपने नेत्रों से श्री भगवान के दर्शन हो सकेंगे। इसके लिए केवल अभ्यास चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियई। हम अपने मोहाच्छन्न नेत्रों तथा अन्य इंद्रियों से श्री भगवान को नहीं देख सकते, किंतु यदि विद्वानों के उपदेशों के अनुसार अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम उनका दर्शन कर सकते हैं। श्री भगवान का दर्शन करते ही अंतःस्थल के समस्त पाप कट जाते हैं। हरे कृष्ण।
इसके पूर्व श्लोक में कहा गया कि आपका दर्शन करने से मेरे समस्त पाप कट गए हैं। तो ये तो दर्शन की महिमा है। आपका केवल एक बार नाम सुनने से पुलकस भी तर जाता है, पाप मुक्त हो जाता है। चंडाल, यहां चंडाल से तात्पर्य है कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो या चंडाल कोई हो, एक बार आपका नाम सुनने से, केवल सुनने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आपके नाम श्रवण की इतनी महिमा है, फिर दर्शन के विषय में क्या कहा जाए। अतः हे भगवान, आपका अवलोक, अवलोक के दो अर्थ हैं, एक तो अपने आंखों से भगवान को देखना और केवल भगवान के सामने हो जाने से भगवान की आंखों से हम देख लिए जाए, दोनों को अवलोक कहते हैं। हे भगवान, आप कृपा दृष्टि से देख लिए हम पर, या हमने आपको देखा, दोनों अवस्था में परिमृष्ट आशय मला, हमारे हृदय के सारे पाप धुल गए, हृदय पवित्र हो गया है। ये चित्रकेतु महाराज का उद्गार है, वे नारद जी के उपदेश का पालन किए और 7 दिन में ही उनको भगवान का दर्शन हुआ, भगवान शंकरसन देव का, जो शेष नाग के रूप में है, उनके हजार फणों वाले रूप का दर्शन हुआ, वही संकर्षण श्री बलराम जी हैं, श्री नित्यानंद प्रभु। तो स्तुति करते हुए चित्रकेतु महाराज कहते हैं, हे भगवान, आपके अवलोक से, दर्शन से हमारा सारा पाप खत्म हो गया। मैं बहुत पापी था पहले, केवल संसार में फंसा था। 1 करोड़ रानियां थी इनकी, और उससे 1 बच्चा हुआ था। तो बच्चे के मर जाने के बाद ये कितना विलाप किए, कितना दुखी थे, ये सब लोगों ने सुना है। तो कहते हैं कि हमारे हृदय में बहुत बड़ी गंदगी थी, आशय मला, आशय हृदय की गंदगी दूर हो गई। यह सब श्री नारद मुनि की कृपा है, उन्होंने हमको उपदेश दिया और मंत्र दिया। ये कहते हैं कि नारद मुनि ताव के न आपके हैं, परम वैष्णव हैं, आपके भक्त हैं। ऐसे सूर ऋषि देवर्षि नारद के द्वारा जो कहा गया वो तो कैसे मिथ्या हो सकता है, सदा सत्य होता है। मैं देख लिया कि आपके अवलोक से मेरा सारा पाप कट गया। श्री प्रभुपाद जी इसके परपर्क में कहते हैं, हम इस संसार में अशुद्ध हैं, अपने प्रयास से भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे, पर श्री नारद जी, वेदव्यास देव और असित जैसे महापुरुषों के आज्ञा का पालन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो हम भगवान को देख सकते हैं। जिनका नाम श्रील प्रभुपाद जी यहां रख रहे हैं, उनका नाम गीता में भी आया है। भगवान ने, अर्जुन ने स्वयं कहा है कि हे कृष्ण, मैं विश्वास करता हूं कि आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, और आहुष्टाम ऋषयः सर्वे, आपके विषय में सभी ऋषि कहते हैं, आहुस्ताम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस तथा, देवर्षि नारद जी आपके विषय में कहते हैं। असितो व्यासो, देवल ऋषि कहते हैं, व्यास ऋषि कहते, व्यास देव कहते हैं, और असित इनका नाम है। बहुत उच्च कोटि के महात्मा आपके विषय में सब ऐसा कहते हैं। केवल ऐसी बात नहीं कि आप स्वयं कहते, आप तो स्वयं कह ही रहे हैं, लेकिन आपके विषय में सभी कहते हैं, व्यास देव असित देवल कहते हैं कि आप परब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं। परम धाम का अर्थ है जो सबके आश्रय हैं, और परम पवित्र है। आहुष्टाम ऋषय सर्व, कोई व्यक्ति अपने विषय में अगर बोले तो उसकी बात उतनी प्रमाण नहीं मानी जाती, उसी के उसके विषय में वही बात यदि बड़े बड़े पुरुष बल हैं तो वह बात प्रमाण होती है। स्वयं भगवान अपने विषय में बोल रहे थे, अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे, तो अर्जुन उसको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं मैं सब मानता हूं, मैं सब सत्य मानता हूं, क्योंकि आपके विषय में आप स्वयं बोल रहे हैं और इसके साथ सभी मुनि ऐसा कहते हैं, ऋषिव कहते हैं। सर्वम एतद हितम मन्ने जन्मम वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानव। सर्वम एतद हितम मन्ने, मैं सबको बिल्कुल सत्य मान रहा हूं, आप जो भी कहते हैं, आपके प्रभाव को आपकी महिमा को देवता नहीं जानते हैं, नहीं ते भगवान। देवा न दानवा, देवता नहीं जानते हैं और दानव भी नहीं जानते, फिर मनुष्य कहां से जानेगा, मनुष्य तो बहुत छोटे स्तर के जीव हैं। हमारी इंद्रियां माया के प्रभाव से दूषित हैं, अतः इन इंद्रियों से भगवान का नाम नहीं बोला जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। जिह्वा में शक्ति नहीं है कि भगवान के नाम का उच्चारण करे, लेकिन जब हम श्रेष्ठ भक्त नारद मुनि जैसे महापुरुष की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, तो हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। परिमिष्टाशय मलाह, आंख भी शुद्ध हो जाती है और सारी इंद्रियां, शुद्ध इंद्रियों पर भगवान का नाम आता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवनोन्मुखे जिह्वादो स्वयं स्फुरत्य। यदि हमारी जीह पर भगवान का नाम आता है तो ये जिह्वा की शक्ति नहीं है नाम को पकड़ने की, लेकिन नाम स्वयं आता है, स्वयं स्फुरत्य, स्वयं ही स्फुरित होता है। इंद्रियों में शक्ति नहीं है कि स्पिरिचुअल भगवान के नाम को पकड़ सके या उनका दर्शन कर सके, लेकिन इन्हीं इंद्रियों में शक्ति आ जाती है जब हम सेवनोन्मुख होते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अगर हम बोलने की कामना करते हैं भगवान के नाम की, तो नाम स्वयं जिह्वा पर आ जाता है। भगवान के रूप को देखने की इच्छा होती है, यही है सेवनोन्मुखता, सेवन की इच्छा। अगर भगवान को हम देखना चाहते हैं, लालसा है, तो उस लालसा से युक्त आंख पर भगवान का रूप स्वयं आता है, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य को देखने की शक्ति हमें नहीं है, लेकिन सूर्य स्वयं जब आता है आकाश में तो उसकी कृपा से हम देख सकते हैं उनको। ऐसे रात्रि में जब चारों तरफ अंधकार होता है, उस समय सूर्य को हम नहीं देख सकते, अंधकार में टॉर्च जला करके या लाइट जला करके हम देखना चाहें सूर्य को नहीं देखेंगे, लेकिन वही सूर्य स्वयं अपनी इच्छा से जब प्रकट होगा तब आसानी से देख सकते हैं। इसी तरह से भगवान हमारी सेवा या अभिलाषा को देखना चाहते हैं, वे जब देखते हैं कि यह व्यक्ति हमारा नाम जपना चाहता है और हमारा दर्शन करना चाहता है, तब वे स्वयं उदित होते हैं इंद्रियों पर, सेवनोन्मुख ही जिह्वा दोष स्वयं एवं स्फुरत सेवनोन्मुख इंद्रियों पर स्वयं आ जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जप रहा है उसने बहुत पुण्य किया था। बहुत पुण्य करने से पवित्र हो जाती है इंद्रियां, जीवा पवित्र हो जाती है, तब भगवान का नाम आता है। भगवान का नाम ऐसे नहीं आ सकता है, स्वयं आता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं भक्ति गोस्वामी सिंधु में, अतः श्री कृष्ण का नाम आदि, नाम रूप लीला जो भी है, न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, तो पकड़ में नहीं आ सकता है। लेकिन सेवनोन्मुख ही जिह्वा दो, सेवनोन्मुख जब भक्त भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं देखूं भगवान को, मैं सुनूं और मैं भगवान का नाम जपूं, तब उसके जिह्वा दो, जिह्वा आदि पर, जिह्वा पर, आंख में, कान में भगवान आ जाते हैं। ऐसा श्री नारद जी ने कहा है और हमसे उन्होंने कहा, तो उसी को चित्रकेतन महाराज कहते हैं, सुरिशिला जत कथितम, जो बात देवर्षि नारद जी ने कहा है कथम अन्यथा भवति, वह झूठा कैसे हो सकता है। आज प्रत्यक्ष हो गया, हमने भगवान का नाम जप किया, आपको प्रणाम किया, तो मैं आपको देख रहा हूं। यह श्री नारद जी का वचन था, उपदेश था कि दर्शन होगा, तो श्री नारद जी का उपदेश कैसे मिथ्या हो सकता है। ऐसे सब जगह उपदेश सुलभ है। श्रीमद् भागवतम में, नारद पंचरात्र में, महाभारत में, रामायण में, सब जगह सुलभ है, वर्णन है उपदेश। हमको श्रद्धा करके केवल उन उपदेशों का पालन करने की आवश्यकता है। पहली चीज है श्रद्धा कि ये बात बिल्कुल ठीक है, परम सत्य है, इसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, अपने जीवन में सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए। गीता पढ़ करके विश्वास को पोषना चाहिए, भगवान ने बातें कहे हैं। एक भक्त एक दिन कहे थे कि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास सब समय नहीं रहता है। तो इसका कारण यही है कि दृढ़ विश्वास नहीं है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ का अर्थ होता है जिसको डिगाया नहीं जा सके, जिसको हटाया नहीं जा सके। दृढ़ विश्वास भगवद्गीता वही जीतीज में, यही वह ग्रंथ है जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने किया है, ये सबसे श्रेष्ठ है, साक्षात भगवान की वाणी है। कई बार मन में तर्क उठता है, कई लोग सोच सकते हैं और भी ग्रंथ है, तो हम उनको क्यों न माने। जैसे बाइबिल है, होली कुरान है, और भी ग्रंथ हैं, वो ठीक है ग्रंथ हैं, लेकिन भगवत गीता के समान कोई नहीं। ये अपने मन में धारणा होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई ग्रंथ है तो हम तो एक आदमी हैं, ये कहीं पंथ पकड़ेंगे ना, हम अपने ट्रैक पर चलें। भगवत गीता की बात हमें माननी है। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे हैदराबाद में, तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, वो प्रश्न किया, हम आपकी बात, गीता की बात कैसे मान लें, कैसे आंख बंद करके मान लें, अंग्रेजी में पूछ रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं कहां कहता हूं कि आंख बंद करके मानो, आंख खोलो और पढ़ो तब मानो। मैं ये नहीं कहता हूं कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट करो, लेकिन ब्लाइंडली रिजेक्ट भी मत करो। प्रभुपाद ने कहा, कैसे, तुम बताओ गीता में क्या कमी है, कौन श्लोक में, कौन शब्द में कुछ कमी है। तो वो कहा कि हमको कमी तो नहीं मिलती है। तो ठीक है, इसी तरह से पढ़ो, आंख खोल करके पढ़ो, देखो और तब रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो। तुम ब्लाइंडली मान नहीं सकते हो तो ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो साक्षात भगवान की बात है। और इसका उपदेश किया है भगवान ने हम सभी मानवों के हित के लिए, सभी मानवों के लिए। गीता में जगह जगह मानव शब्द का प्रयोग है, उसमें कहीं भी हिंदू या क्रिश्चियन इन शब्दों का प्रयोग नहीं है। मानव स्वस्व कर्मणात्मा व्यर्थ सिद्धिम बिंदंति मानव, सिद्धिम बिंदंति मानव, ये मानव मात्र के लिए उपदेश है। अवश्य यह गाय के लिए नहीं है, ये बैल के लिए नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए है। और परम सत्य है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। प्रतिदिन कुछ पढ़ना चाहिए अपने जीवन के लिए। भगवत गीता में भगवान का उपदेश है, कोई न कोई श्लोक हमारे लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा। महात्मा गांधी जी भगवत गीता पढ़ते थे, वे कहते हैं कि जब जब मेरे जीवन में निराशा आती है, चारों तरफ अंधकार छा जाता है, सुझता नहीं क्या करूं, तो उस समय मैं गीता माता की शरण लेता और कोई न कोई श्लोक मुझे प्रकाश दे देता। अपने जीवन में महात्मा गांधी गाइड प्राप्त करते हैं भगवद्गीता से। श्रील प्रभुपाद गीता और भागवत के भरोसे विदेश में गए और उन्होंने अद्भुत प्रचार किया। एक बार इंग्लैंड में प्रभुपाद जी कुछ भक्तों के साथ बैठे थे, तो उन लोगों ने पूछा, प्रभुपाद जी बहुत से योगी सन्यासी भारतवर्ष से यहां आते हैं, पहले भी आए अब भी आ रहे हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ, आप क्यों आए, आपका कोई स्पेशल मिशन है? प्रभुपाद ने कहा हाँ, तुम्हारे पूर्वज हमारे देश में गए थे, वहां से बहुत धन लूटे, इंग्लैंड में बोल रहे थे प्रभुपाद, बहुत से धन चुराए लाए, लेकिन सबसे बड़ा खजाना छोड़ आए, मैं उसी को पहुंचाने आया हूं। तो वो खजाना क्या है? पहला नाम लिए प्रभुपाद श्रीमद् श्रीमद् भगवत गीता है, उसी गीता एजिटी को मैं पहुंचाने आया हूं, सबसे बड़ा धन भारत का, इससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, इसको पढ़ो। यही प्रभुपाद जी ने कहा, मैं आया स्पेशल मिशन लेकर आया हूं, गीता की सबसे सुंदर व्याख्या लेकर के आया हूं, सबसे बड़ा धन जिसको तुम्हारे पूर्वजों ने छुआ तक नहीं, सब धन लूटे लेकिन असली धन को छोड़कर आ गए। तो वो धन तो हम लोगों को सुलभ है, भगवद गीता एज इट इज, अपना जीवन धन्य करने के लिए, जीवन की सारी समस्याओं का हल करने के लिए और सुख शांति प्राप्त करने के लिए भगवद गीता छोटा ग्रंथ है, इसी को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। और एक बात मैं और कहूंगा कि कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। रामचरितमानस के अंत में पक्षीराज गरुड़ जी प्रश्न किए हैं, सात प्रश्न कालभूषण जी से, तो उन्होंने पूछा है एक प्रश्न में, सबसे बड़ा है पाप क्या है? तो कालभूषण जी कहते हैं, परनिंदासम अघन खगेश, परनिंदा के समान कोई पाप नहीं। महाराज परीक्षित दिग्विजय करते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि एक शूद्र व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर गाय और बैल को मार रहा है, और बैल का तीन पैर कटा हुआ है, एक पैर से चल रहा था किसी तरह। तो महाराज परीक्षित को बहुत दया आई, वे लगे पूछने बैल से, आपको कौन क्रूर किया, आपके पैर को कौन काटा? तो महाराज परीक्षित देख रहे थे कि कलयुग ही शूद्र के रूप में मार रहा था गाय बैल को, पर फिर भी वे पूछे, आपको कौन दुख दिया है? पांडवों के प्रतिनिधि मेरे रहते हुए मेरे राज्य में आपको कौन ऐसा दुख दिया, बताइए। तो बैल कहते हैं, महाराज हमारी समझ में नहीं आता, इतना वाक्य है ज्यादा, इतना इसके विषय में विचार किया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म कारण है दुख देने, ना वयम क्लेश भी जानी, हम क्लेश भी जानी दुख के कारण को नहीं जान पाते, आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप विचार कीजिए कि दुख का कारण क्या है। तो महाराज परीक्षित देख रहे थे सामने, यह व्यक्ति मार रहा है बैल को, गाय को, और फिर भी बैल कह रहे हैं कि हमको मालूम नहीं, कोई कर्म को कारण कहते हैं, कोई स्वभाव को, कोई अपने को ही कारण मानते हैं, जीव के दुख का कारण जीव ही है, दूसरा नहीं। अतः मैं तो समझ नहीं पाता हूं, धर्म ने कहा कि मैं समझ नहीं पाता हूं दुख का कारण क्या है। आप बहुत बड़े वंश में जन्म लिए हैं, अर्जुन के वंश में, आप स्वयं विचार कीजिए। जीव के दुख का कारण क्या है, यह हमारे दुख का कारण क्या है। तो महाराज परीक्षित तुरंत समझ गए, वे कहे कि धर्मों से आप धर्म हैं, आप धर्म की बात जानते हैं, आप सब कुछ जानते हुए भी बता नहीं रहे। जद धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवति, जो पाप करने वाले व्यक्ति को होता है नरक आदि, वही दंड उसको भी मिलता है जो सूचक, जो सूचित करता है किसी के दोष को। यदि कोई कहता है तो वह कहने वाला व्यक्ति भी उसी पाप का भागी होता है। इसीलिए संसार में किसी के दोष को कभी नहीं कहना चाहिए। सूचकस्यापि तद्भवति, जद धर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवति, पाप करने वाले व्यक्ति को, व्यक्ति की जो स्थिति होती है वही उसकी सूचना देने वाले को भी होती है। सूचकस्यापि, सूचक कहते हैं चुगलखोर, जो चुगली करता है वह भी उससे के समान ही पापी है। अतः काक भुसुंडी जी कहते हैं परनिंदा सम अघन खगेश, पर निंदा के समान अघ है ही नहीं कोई। अपने को शुद्ध रखना चाहिए, शुद्ध हृदय में ही भगवान आते हैं। एक बार लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी सवेरे बैठे थे तो एक भक्त ने कह दिया, प्रभुपाद जी यहां तीन चार भक्त आज मंगला आरती में नहीं आए थे। तो इसको सुन करके प्रभुपाद जी कहते हैं फिर भी वे मेरे पास निंदा करने के लिए नहीं आए तुम्हारी, और तुम निंदा कर रहे हो, ठीक नहीं है। वो निंदा करने पहुंचा कि ये मंगला आरती में नहीं आए, तो प्रभुपाद जी पता लगाए क्या कर रहे थे वो लोग, उनसे पूछे तो वो तो बताए हम लोग रात में एयरपोर्ट पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे। तो प्रभुपाद जी निंदा करने वाले को कहे तुमको उपवास करना चाहिए, तुमने बड़ा पाप किया है, ये लोग तो पुण्य कर्म में थे और तुम निंदा कर रहा था। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत कड़े शब्दों में फटकारा उस भक्त को। ते चुगलखोरी बहुत बड़ा पाप है, कुछ लोगों की आदत होती है किसी के बुराई को फैलाना। इस संसार में बहुत बुराई है, बुराई को फैलाना नहीं चाहिए। जितना हो सके बुराई को दबाना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए। गंदगी फैलाने से गंदगी बढ़ती है। किसी के पास पहुंच करके और किसी के दोस्त को बताने से वह व्यक्ति जो बोल रहा है वो तो अशुद्ध होता ही है, जो सुनता है उसका भी कान अशुद्ध हो जाता है। उसका चिंतन करने से हृदय दूषित होता है। तो जो व्यक्ति चाहता है जीवन में उन्नति, वो भूल करके भी ये काम ना करे। किसी के दोस्त को अगर सुना है देखा है तो अपने तक रखे, अपने हृदय में ही जो भी गंदगी है रहे, दूसरे का कान अशुद्ध ना करे। ये सबका कर्तव्य है, विशेष करके ये भक्तों में देखा जाता है। वे तुरंत किसी दूसरे भक्त की निंदा करने लगते हैं, जैसे लगता है कि भूखे हैं और वो दूसरे को यही परोस रहे हैं। स्वयं ये न देखें दूसरे की बुराई, और अगर दिखाई पड़े तो अपने ही घर में रखें, अपने हृदय में। भगवान शिव इसके विषय में कहते हैं, वे विष को पी गए, समुद्र से विष निकला, भगवान शिव पी गए, और पीने के बाद फिर भगवान उसकी उल्टी नहीं किए। अगर विष बाहर किए होते तो संसार का अनिष्ट करता और बोलते भी नहीं थे किसी के दोस्त को। तो भगवान शिव से सीखना चाहिए, अगर किसी के दुर्गुण को दोष को देखने की आदत है तो ठीक है, अपने ही कंठ तक रखे, कभी उगले नहीं, कभी बोले नहीं। नहीं बोलेगा तो उस दोष का संचार नहीं होगा। जैसे विष को भगवान शंकर ने पचा लिया कंठ में, ऐसे पचा लेना चाहिए। बोलने की चीज है तो वो है भगवान का नाम, भगवान का गुण है, वही बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। गीता का कोई श्लोक सुनाना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। मैं पर्सनल कह रहा हूं इस बात को कि हमें इस बात से बहुत दुख हुआ है। एक भक्त आकर के मेरे पास कुछ बोलने लगा, मैं बीमार हूं, ऐसे ही मुझे बहुत बड़ा दुख है कि भगवान की बात सुनने को नहीं मिलती है, भगवान का दर्शन करने में भी कठिनाई। फिर ऊपर से आ करके हमारे कान में यदि कोई परनिंदा डालता है तो हमारा वध कर रहा है, ये हमें बहुत तकलीफ हुआ है। तो मारने के बराबर है। कभी कोई गीता पढ़ने नहीं आता है, कोई भागवत पढ़ने नहीं आता है, भगवान का नाम जपते हुए बहुत कम लोग सुने जाते हैं। सबको केवल भगवान का नाम जपना चाहिए, अपने को और संसार को सबको शुद्ध करने के लिए। कभी भी भूल करके भी पर निंदा न किया जाए, दूसरे की बुराई, यही सबसे बड़ा पाप है, यही है हृदय का मल, जिसको चित्रकेतु महाराज कह रहे हैं मैं सिद्ध हो गया, मुझ में अब गंदगी नहीं है। एक समय में कितनी बड़ी गंदगी थी, और एक विवाह के बाद दूसरा विवाह, विवाह के बाद और विवाह, इस तरह से 1 करोड़ विवाह किया उन्होंने। और किसके लिए? पुत्र की कामना थी, पुत्र की कामना। लेकिन जितना विवाह किए सब बैरन हो गए, बंध्या हो गई स्त्रियां। तब उस लड़के के मरने पर उनको ज्ञान हुआ, और सभी दानियों ने मिलकर के उस बच्चे को जहर दे दिया, वो मर गया। तब नारद जी आए, अंगिरा जी आए, बच्चे को जिला करके नारद जी ने उपदेश कराया, तब उनको ज्ञान हुआ, शुद्ध हुए। और आज कह रहे हैं कि मैं आपके दर्शन से पवित्र हो गया, मेरे हृदय का दोष समाप्त हो गया। क्योंकि मैं नारद मुनि की आज्ञा का पालन किया, नारद जी का उपदेश कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तो जो चित्रकेतु महाराज के लिए सत्य है, वो हमारे लिए भी सत्य है। किसी भी स्थिति से हम निकल सकते हैं, कितना भी अशुद्ध हो हम पवित्र हो सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। पर जरूरत एक ही बात की है कि नारद जी जैसे महापुरुष की आज्ञा का पालन करें, हमेशा भगवान के नाम का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे जय श्री लक्ष्मी।
हरे कृष्ण महाराज, मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, आप बोले कि भगवान को दर्शन करने से पहले जो संसार बंधन से मुक्ति हो जाते, जो भगवान को दर्शन के लिए बाहर लोग इधर आते भी भक्त इधर आते और माया बंधन से बंद हो जाते और संसार से डूब जाते, ये कैसे उद्धार हो गया?
संसार का मतलब पहले समझिए, संसार का मतलब है एक शरीर के बाद दूसरा शरीर लेना, जन्म मरण। और जन्म मरण का कारण है कर्म, कर्म वासना। हम बहुत कर्म करते हैं, कर्म वासनाओं में पड़े रहते हैं, और उस कर्म के अनुसार फल बनता है। इसी के कारण हमें देह ग्रहण किए हैं, और इस देह के बाद दूसरा देह मिलेगा ही, इस देह छूट जाएगा। इस तरह बारंबार जन्म होता है, इसको संसार कहते हैं। तो ये भगवान का नाम लेने से हमारी कर्म वासना समाप्त हो जाती है, और जन्म मरण की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है।
अच्छा हरे कृष्ण महाराज, ये यदि ठीक है, अच्छा पाकिस्तान में हमारे भी प्रचार होता है और श्रीलंका में प्रचार भी होता है और हरे कृष्ण महामंत्री सबके मालूम है, लेकिन मुसलमान लोग जो काट देते, लोग मार देते, छोटे छोटे बच्चों को मार देते, ये लोग कहाँ जाएंगे मरने के बाद?
वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके कर्म के अनुसार वो तो जमराज जी बताएंगे, हमको मालूम नहीं है।
हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज एक प्रश्न था कि आपने बोला कि किसी की गलती ढूंढना सबसे बड़ा पाप होता है, महापाप होता है, लेकिन मतलब हम लोग कभी कभी कोशिश भी करते हैं कि ठीक है मैंने गलती देखी है लेकिन नहीं बोलना है, लेकिन जब भी क्रोध आता है उस पर्सन के प्रति, मतलब उस व्यक्ति के प्रति, या उसने मेरी कुछ गलती है को बार बोलना चालू किया तो मेरे अंदर भी फिर वो रुक नहीं पाता है, वो दूसरे की गलती बोल उनकी गलतियां बोलना चालू कर देते, तो उस वक्त कैसे रोके? मतलब
दूसरे की गलती देखना ही पाप है, बोलना तो और ज्यादा, तो अपनी दृष्टि को बदलना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए।
दृष्टि कैसे बदले महाराज?
कोई पाप किया है, गलती कर रहा है, तो गलती कौन कराया है इस विषय में बहुत तर्क है, बहुत बातें हैं, तो कुछ निश्चय नहीं हो पाता है क्यों गलती किया, इसीलिए ये सब देखना ही पाप है। गलती देखना है तो अपनी गलती को देखना चाहिए, अपने हृदय को देखना चाहिए। हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं तो अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, हम दूसरे की चिंता नहीं करते हैं, वह व्यक्ति नहाया नहीं, वह व्यक्ति सो रहा है, क्या कर रहा है, हमें अपनी शुद्धि करनी है। स्नान करते हैं, आंख धोते हैं, दांत धोते हैं, इस तरह अपने को शुद्ध रखने के लिए दूसरे की गलती नहीं देखना है। दूसरे की गलती देखना मतलब हम नहाए नहीं और दूसरे को कहें कि ये स्नान नहीं किया, ये नहीं किया, दिन भर यही करें, तो अपनी गंदगी तो ज्यों के त्यों रह जाएगी बल्कि और बढ़ जाएगी। इसीलिए इस संसार में आए हैं तो अपनी शुद्धि करनी चाहिए, दूसरे के दोषों को देखेंगे तो हमें दोष का चिंतन होगा, वर्णन करेंगे तो उससे संसार अशुद्ध होगा।
हरे कृष्ण महाराजी, महाराजी आपने जो अहम बात बताई कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अगर कोई भक्त सीनियर डिवोटी कोई निंदा करते हैं हमारे सामने तो उस समय हमें क्या करना चाहिए?
मैं ये कहा कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये व्यक्ति के लिए सुझाव है, निंदा करने से हमारी अशुद्धि बढ़ती है और जगत भी अशुद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति हाथ में मल को छू लिया है तो उसको दूसरे को सुंघाते नहीं चलना चाहिए, देखिए हमारे हाथ में लगा है, ये लगा है, तो जिसको सुंघाएगा उसकी तो अशुद्धि होगी ही, और वही वो जो सुंघा रहा है वो कितना बड़ा पाप कर रहा है। अगर सीनियर भक्त है वो किसी को डांट रहा है, समझा रहा है, तो वो निंदा नहीं है। पिता अपने बच्चे को डांटे बोले, माता जी डांटे, तो वो निंदा नहीं है, वो तो सुधार है, लेकिन निंदा जब दूसरे की जाती है दूसरे के सामने और कोई स्नेह से या हित की भावना से नहीं, तो वो निंदा है। यदि गुरु अपने शिष्य को डांटता है, कुछ कहता है, तो ये निंदा नहीं है, क्योंकि वह शिष्य के हित के लिए कह रहा है, उसके सुधार के लिए कहता है। कोई सीनियर भक्त जैसे अध्यक्ष है, कुछ अन्य भक्तों को डांटे, कुछ कहे, तो निंदा नहीं, निंदा दूसरी चीज है।
हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा। अगर भगवान साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके हमारा सामने प्रकट होता है और उस टाइम में हम भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, वो हमारा दुरादृष्ट समझने का है क्या?
क्या ठीक से बोलिए, मैं नहीं सुना। असल में उधर माइक स्पीकर है तो उधर से आवाज आ रही थी, तो मैं आपको नहीं समझ पाया।
अगर भगवान साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके हमारा सामने प्रकट होता है और उस समय हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, वो हमारा दुरादृष्ट समझने का है क्या?
अंतिम वाक्य क्या बोले?
हमारा दुरादृष्ट है क्या वो?
हम भगवान को पहचान नहीं पाए, वो तो मैं समझा, लेकिन इसके बाद
वो हमारा दुरादृष्ट होता है क्या? अगर भगवान साधारण व्यक्ति के रूप से हमारा सामने प्रकट होते हैं और हम उस समय हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, तो वो हमारा दुरादृष्ट समझने का है क्या? दुरादृष्ट बैड फॉर्च है हमारा,
दुर्दृष्ट।
दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य समझने का है क्या?
भगवान ऐसा नहीं है कि बांसुरी बजाते हुए प्रकट हो जाए। भगवान तो जगत के रूप में प्रकट है, जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, उन सभी के रूप में प्रकट है। वे स्वयं गीता में कहे हैं, यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, जो मुझको सब जगह देखता है और सब में मुझको देखता है, उससे मैं दूर नहीं हूं, उसके आंखों से ओझल नहीं होता हूं और वह मेरे आंखों से ओझल नहीं होता। भगवान को तो जिस रूप में आ रहे हैं उस रूप में देखने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा है, मैं सभी जीवों में हूं और सबसे अधिक मैं मनुष्यों में हूं, क्योंकि मनुष्य अधिक चेतनाशील प्राणी है, उसमें मुझको अधिक देखना चाहिए। सभी जीवों का सम्मान करना है, लेकिन मनुष्यों का उसमें ज्यादा। धीरे धीरे हम भगवान को ऐसे समझेंगे, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में सृष्टि का वर्णन है। पहले भगवान की कला को समझें, भगवान इस विश्व को बनाए हैं, भगवान सबको भोजन दे रहे हैं, भगवान सबको ज्ञान दे रहे हैं। इस विश्व को बनाने में और इसको चलाने में कितने सामान की जरूरत है, वही बनाए हैं, वही चला रहे हैं, वही संहार करते हैं। बारंबार इस बात को बोला गया है, सैव श्रीजे श्रीजा श्रीजति सैव अवति अति। तो हमें हम चूंकि भगवान की सृष्टि में रह रहे हैं तो इस सृष्टि की विशेषता को देख करके भगवान की महिमा समझनी चाहिए। हमारे सामने जो भगवान रचना किए हैं इसको देखना चाहिए। जैसे हम प्रभुपाद जी को समझना चाहते हैं तो केवल प्रभुपाद जी के पिक्चर को देखने से हम नहीं समझ पाए। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित ग्रंथ को देखेंगे, उनके द्वारा बनाए हुए मंदिर को, या प्रभुपाद जी को समझने की विधि है, ऐसे ही कृष्ण को समझने की विधि है, उनके द्वारा रचे हुए इस विश्व की विशेषता को देखना। इतनी बड़ी बुद्धि होगी उस व्यक्ति को जिसने विश्व का निर्माण किया। कई लोग जाते हैं देखने आगरा ताजमहल को, और उसके कारण शाहजहां की स्तुति करते, प्रशंसा करते, लेकिन ताजमहल में क्या है उसके अंदर जाकर देखेंगे केवल दो आदमी का कब्र है, कब्र है, वह श्मशान है, उसमें और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देखने जाते हैं। तो भगवान की सृष्टि को समझना है, भगवान की विशेषता को, कि भगवान परम बुद्धिमान है, इस संसार की रचना कर दी, और कैसे किए, केवल दृष्टि से ये विचार किए कि संसार बने तो बहुत से जीव उत्पन्न हो गए, बहुत से ब्रह्मांड अलग अलग कर्मों के अनुसार जीवों में मछलियां भी हैं, पेड़ पौधे और भी पक्षी जन्म लिए, पशु जन्म लिए, मनुष्य जन्म लिए, इनको भगवान ने जन्म दिया और उसके बाद पालन भी किया। यही भगवान की दया है, उनका ज्ञान है, उनकी बुद्धि है। तो भगवान की बुद्धि का अध्ययन करना चाहिए। एक इंजीनियर के द्वारा बनाया हुआ घर हम देखकर आश्चर्य करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस विश्व के विशेषता का जब हम ध्यान करेंगे, विचार करेंगे, तब भगवान की महिमा समझेंगे। भगवान को समझने के लिए पहले उनकी सृष्टि को देखना होता है। हम यह आग्रह नहीं कर सकते कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो और बांसुरी बजाते हुए राधा रानी के साथ प्रकट हो। भगवान अपने विषय में जो वर्णन करते हैं भगवत गीता में, वो पहले देखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं सूर्य में प्रकाश हूं, मैं जल में तेष्ट हूं, और मनुष्य में मैं पौरुष हूं, उसकी काबिलियत। भगवान को इसी रूप में हमें समझना पड़ेगा। यही विधि है। हम लोग जल प्रतिदिन पीते हैं, जल में जो टेस्ट है वो भगवान है। यदि किसी व्यक्ति को खूब प्यास लगी है तो जल के रस का अनुभव कर सकता है, तो इसका अर्थ है कि हम एक गिलास पानी पीते समय भी कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान को देखें, देख करके तब कृष्ण भावना भावित हो। पानी पीते समय भी हम ये विचार करें कि ये पानी कौन बनाया, पानी में जो शक्ति है हमको तृप्त करने की, ये कौन है, तो वो भगवान कृष्ण है। तो पानी पीते समय भी हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, एक एक घूंट पर। हम केवल विचार करें कि यह पानी भगवान कृष्ण दिए हैं हमको तृप्त करने के लिए। और सूर्य में चंद्रमा में मैं प्रकाश कहते हैं, कभी प्रकाश देखें तो विचार करें कि ये भगवान कृष्ण कितने दिव्य है, दिव्य कितने प्रकाशित हैं, उन्होंने सूर्य में प्रकाश दिया है, जिस प्रकाश से हम सभी जीवित रहते हैं, काम करते हैं। तो प्रकाश देखते ही हम भगवान का स्मरण करें। भगवत गीता में भगवान ने बातें बताई है ना, मैं प्रभास्मी शशि सूर्यो, मैं सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं। रसो हम अपसु कौन्तेया, अपसु जलों में मैं रस हूं। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, यदि कोई शराब पीता है तो शराब पीते समय भी वो भगवान का स्मरण कर सकता है, ये भगवान शराब में शक्ति दिए हैं, वही बनाए हैं। पानी वो बनाया लेकिन शराब तो मनुष्य ने बनाया, तो शराब पीते समय भी एक आनंद होता है, तो वह आनंद भगवान कृष्ण से मिल रहा है। वो अपने एक लेक्चर में कहते हैं, शराबी को भी ये सोचना चाहिए कि शराब में जो विशेषता है, रस है, वह भगवान का दिया हुआ है। इसका अर्थ है नहीं कि उसे शराब पीना चाहिए, उसे जल पीना चाहिए, सड़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। शराब का अर्थ होता है सड़ा हुआ आब, आब माने पानी। ये सड़ा हुआ पानी बोतलों में बेचा जाता है और उसी को दुर्बुद्धि लोग पीते रहते हैं। तो भगवान अपने को जैसे समझा रहे हैं वैसे समझना चाहिए। भगवद गीता में वो विधि है समझने की। तो हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवद गीता के अनुसार भगवान को समझे, तब हम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, नहीं तो हम संसार में जिएंगे, भगवान की सृष्टि को देखेंगे और फिर भी सृष्टि की विशेषता को देख करके भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो ये दुर्भाग्य है। सब समय भगवद गीता के अनुसार भगवान की विशेषता हमारे मन में धस जानी चाहिए, वही जिला रहे हैं, वही प्रकाश दे रहे हैं, वही भोजन दे रहे हैं विविध रूप में। मनुष्यों में भी वे शक्ति दे करके हमें विविध वस्तुएं दे रहे हैं। जितना भी आविष्कार है, जितनी भी वस्तुएं बन रही हैं, वो किसी कलाकार द्वारा या वैज्ञानिक द्वारा, उस वैज्ञानिक में बुद्धि देना, इंजीनियर में बुद्धि देना, ये सब भगवान का काम है। बुद्धि बुद्धिमतामस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। तेजस तेजस्वी नाम, मैं तेजस्वियों का तेज हूं। तो ये समझना कि ये सब कुछ कृष्ण के द्वारा मिल रहा है। अगर बहुत अच्छा घर बना है, बहुत अच्छी मोटर गाड़ी है, तो वो सब कृष्ण दिए हैं। मोटर गाड़ी बनाने वाले, कंप्यूटर बनाने वाले में बुद्धि है, वायुयान बनाने वाले में बुद्धि है, भगवान बुद्धि देते हैं। किसी के द्वारा बहुत सुंदर गीत गाया जा रहा है तो गान सब भगवान कृष्ण से आता है, वही कंठ दिए हैं, वही गान विद्या दिए हैं। जब हम इस तरह कृष्ण के अतिरिक्त अन्य को नहीं देखते हैं, केवल कृष्ण को देखते हैं, तो यही है सच्चा दर्शन। इस तरह से हम देखते देखते परिपक्व हो जाते हैं, तब भगवान को आसानी से देख सकते हैं, उनके श्याम सुंदर रूप को। लेकिन इस रूप को देखने के लिए भगवत गीता के अनुसार देखना चाहिए। सभी वस्तुओं में, सभी जगह, सब में भगवान को देखें। हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो दुनिया कैसे चल रही है, कौन बनाया है, कौन सब चला रहा है, कौन मैनेजर है, किसकी बुद्धि है, इसको देखना होगा ना। और सब भगवान कृष्ण की है, भगवद गीता में बताए हैं। यदि गुण गाना है, विशेषता गानी है, तो भगवान कृष्ण की ही गानी चाहिए। सब समय वही कीर्तनीय है, प्रशंसनीय है, उन्हीं के बारे में बोलना है, उन्हीं के बारे में सुनना है, उन्हीं के बारे में मनन करना है, मन में, बुद्धि में, वाणी में वही रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। जय श्री राधे।